हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज बड़ा शुभ दिन है। आप सब इस शुभ अवसर पर चैतन्य महाप्रभु, जो कि सब अवतारों में सबसे दयालु हैं, उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा। गौरंग महाप्रभु की। तो आज हम 11वें स्कंद का एक श्लोक पढ़ेंगे। वी हैव अ बुक जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्णा वर्णम विशा कृष्णम रंगोपंगस पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यंती ईशु मेहनता कृष्णा वर्णन पीषा कृष्णम संगोपंगस पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जानती ही उसे मेरस कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपंगस पार्षदम यज्ञ संकृतन प्राय जानती ही उसे मेरस कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपंगस पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय मेरस। कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है। ओके ओके, कोई उच्चारण करना चाहता है? माताजी शब्द
कृष्णवर्णम कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना। त्विषा कांति से, अकृष्णम काला नहीं सुनहरा, सअंग संगियों समेत, उपांग सेवक गण, अस्त्र हथियार, पार्षदम विश्वास पात्र साथी, यज्ञ यज्ञ द्वारा, संकीर्तन प्राय मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त, यजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही सुमेधस बुद्धिमान व्यक्ति। अनुवाद। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों सेवकों आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 352 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का टीका इसी प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवत 11.5.32 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में गर्गमुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वह 3 अन्य रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेतायुग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात हैं। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करने तथा स्मरण करने करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्ण्यति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं, और चूंकि वह स्वयं कृष्ण है, अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावना अमृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य के दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण साक्षात भगवान, श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है।
ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजनाश्रक्य श्रीचैतन्य मनो वंदेहं श्रीगुरु सद्वैतं सुवधूतं श्रीराधा कृष्ण हे कृष्णा करुणा सिंधु वांचा जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण वंदन त्रिशा कृष्ण संग पंकाश प्रश्नाम यज्ञ संकृतन प्राय जयंती ही श्रीमेद सा। तो ये भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसके द्वारा हमें सूचना मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से गिदारी भवती भारत धर्म से हम अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ। तो ये नहीं कि हम कहें कि हमें भगवान के अवतार है, जैसे आज के वातावरण में कई लोग ये दावा करते हैं भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्र में प्राप्त होता है, जैसे कि इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट होंगे जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न होंगे और जो कि सदा भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। इसी विषय पर भागवतम के सातवें स्कंध में हमें प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं प्राप्त होती हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के उत्तम कोटि के भक्त है। आप पढ़ते हो सातवें स्कंध में किस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की सदा सुरक्षा की। राके कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राके के, जैसे भगवान बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कहते हैं आप कलियुग में गुप्त अवतार के रूप में प्रकट हो गए। गुप्त अवतार का मतलब मालूम है किसे? छुपा हुआ अवतार। इसलिए आपका नाम है त्रियुग। आप सतयुग द्वापर युग त्रियुग में स्पष्ट प्रकट हो गए, पर कलियुग में आप किस रूप में प्रकट हो गए? भक्त के रूप में छुपे हुए अवतार। गुप्त अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने अनेक समय समझाया है, भगवान प्रकट हुए भक्त के रूप में। क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए। किस विषय पर शिक्षा? कि आप जीवन को कैसे सफल बना सकते हो। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव नस्तेव एव गति अन्यथा। इस कलियुग में हरि का नाम। तो ये है गुप्त अवतार का उद्देश्य, हरि नाम की महिमा का प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके सनातन भक्त प्रकट हो चुके थे, जैसे कि भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले नंद महाराज यशोदा माता वासुदेव देवकी पहले बालराम पहले प्रकट हो चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले जगन्नाथ मिश्रा सची माता उपेंद्र मिश्रा अद्वैताचार्य माधवेंद्र पुरी हरिदास ठाकुर ये सब पहले प्रकट हो चुके थे। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर शांतिपुर स्थान में थे और अद्वैताचार्य हालांकि महाविष्णु के अवतार है, जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए। तो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ बैठकर सारा दिन हरि नाम का उच्चारण और भगवत का अध्ययन। अद्वैताचार्य के पास एक शालिक दो शालिक शिलाएं थी जिनका दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो शांतिपुर के मंदिर में। तो अद्वैताचार्य इस शालिक शिला की पूजा कर रहे थे, तुलसी गंगा जल और चंदन के साथ उनकी प्रार्थना क्या थी, हे भगवान आप स्वयं प्रकट हो जाओ। किस लिए, किस लिए भगवान प्रकट क्यों होते हैं? प्रायतन आया साधु नाम बिना शिष्य दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ आया, किस लिए? परितों को उद्धार करने के लिए। इसके लिए इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रसिद्ध प्रार्थना में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, चैतन्य महाप्रभु आप मेरे पर दया कीजिए, पतित पवन हेतु तव अवतारा, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, ये था चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य। तो जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता भगवान के माता पिता थे। जगन्नाथ मिश्र के पिता का नाम था उपेंद्र मिश्र। तो उपेंद्र मिश्र के 7 बेटे थे जिनमें एक थे जगन्नाथ मिश्र। और जगन्नाथ मिश्र नवदेव धाम में चले गए रहने के लिए। आज से 500 साल पूर्व खास करके जबकि महाप्रभु प्रकट हुए थे, भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान नवदेव धाम था। भारत के जितने विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे, उन सब का निवास का स्थान कहाँ था? नवदेव धाम है। तो जगन्नाथ मिश्र गए नवदेव धाम में रहने के लिए। वहां का संबंध हुआ एक बहुत बड़े संस्कृत पंडित जो बहुत ही ऊंचे कोटि के जोशी भी थे, जिनका नाम था नीलम्बरा चक्रवर्ती। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती बड़े प्रभावित हुए जगन्नाथ मिश्र की संस्कृत भाषा में रुचि और ज्ञान से। उनकी एक बेटी थी सच्ची माता। तो नीलम्बरा ने कहा कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची देवी की पहले 8 बेटियां हुई थी जो कि जन्म लेते ही शरीर त्यागना पड़ा। उसके पश्चात एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था विश्वरूप। जैसे कि पहले बालराम जी प्रकट हुए, बालराम जी ने वातावरण बनाया कि कृष्ण भगवान प्रकट हो जाए, उसी प्रकार पहले विश्वरूप प्रकट हुए, उसके पश्चात विश्वंभर। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु माता के गर्भ में 1 साल के लिए थे। अक्सर बच्चा माता के घर में कितने महीने रहता है? 9 महीने। महाप्रभु क्यों 1 साल में क्यों थे? महाप्रभु खुद चुनना चाहते थे बहुत ही शुभ अवसर जबकि वो प्रकट हों इस पृथ्वी पर। जब निमाई ने जन्म लिया तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उनके जन्म पत्री बनाई जो कि रिवाज था उस समय। आजकल तो जन्म पत्री कंप्यूटर बनाते हैं पर प्राचीन समय में असली जन्म पत्री बनाई जाती थी। तो आजकल तो आप $5-50 दो आपको जन्म पत्री मिल जाएगी। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने जब जन्म पत्री बनाई तो ये देखा, ये लड़का, ये बालक पूरे विश्व को संभालेगा, इसलिए उसको क्या नाम दिया? विश्वंभर। इसका जो रंग है गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन, इसलिए उसका नाम दिया गौरंगा। उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे, इसने उनको नाम दिया। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने ये सूचना दे दी थी कि जो बालक है साधारण बालक नहीं, ये भगवान का अवतार है। पर एक सूचना उन्होंने माँ बाप को नहीं दी कि 24 साल की आयु में आपका बेटा संन्यास ग्रहण करेगा। संन्यास मतलब घर को त्याग देगा। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जन्मा कर्म चा में मेरा जन्म प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही देवियम। देवियम का मतलब है अद्भुत लीला प्रकट करना। जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे उन्होंने शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट की। पहले प्रकट हुए थे अपने देवीय रूप में, सोने गहनों से सजे हुए थे चार हाथों के साथ। तो जब माता पिता ने कहा साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो नहीं तो कम्स को सूचना मिल जाएगी, तो तुरंत ही उन्होंने साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट की। उदाहरण के लिए उनके पांव के नीचे सारे विष्णु के चरणों के लक्षण थे। तो जो घर में थे तो माता पिता ने देखा ये निशानों को, तो पहले वो सोचने लगे शायद उनके घर में जो मूर्ति है वो चल रही है, उसके निशान है। फिर माता जब दूध पिला रही थी स्तन से, उन्होंने देखा ये निशान उनके बेटे के चरण में है। छोटे से ही थे तो उनके घर में एक ब्राह्मण आया था रहने के लिए, जगन्नाथ मिश्रा ने ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण को कहा हमारे घर में ठहरिए। ब्राह्मण जो हैं अक्सर अपना काम खुद करते हैं, भोजन भी खुद तैयार करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें सुविधा दी भोजन तैयार करने की। ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया, जैसे भगवान को भोग लग रहा था शैतान निमाई ने आकर उसे क्या कर दिया, झूठा कर दिया। ब्राह्मण ने कहा ओह अभी मैं भूखा रह जाता हूं। ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता। साधारण समाज में हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, तुम्हारे कारण मेरी ये समस्या हुई है ना। ब्राह्मण सोचता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रहूं तो भूखा रह जाता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं नहीं तुम हमारे मेहमान हो, तुम भूखा नहीं रह सकते। तो ब्राह्मण ने फिर से बनाई, फिर से बनाया प्रसाद, भोग लग रहा था, फिर निमाई ने आकर भोग संभकते समय आके झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने 2 मील की दूरी पर अपने बेटे को बंद कर दिया ताले में और मेहमान से कहा अब आप शांति से भोजन बनाइए। और रात के लगभग 12 बज गए थे, सब सो गए। जब तीसरी बार ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया तो निमाई फिर से प्रकट हो गए उनके सामने। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें बंद किया था ताले में, दूरी पर कैसे पहुंच गए। तो निमाई ने अपना कृष्णा का रूप प्रकट किया और कहा तो मुझे ही तो भोग लगा रहे हो, तो मैं ये भोग को स्वीकार कर रहा हूं, तो गुस्से की होते हो। फिर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि उन्हें कृष्ण का रूप का दर्शन मिला। तो ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने कहा ब्राह्मण से किसी को ये सूचना मत देना कि तुमने मेरा दर्शन लिया है। तो इस प्रकार महाप्रभु की कई बाल लीलाएं हैं। एक से क्योंकि उनका शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ, एक समय क्योंकि क्योंकि उनके शरीर सजावटा गहनों के साथ, एक समय चोरों ने उन्हें चुरा लिया इस उद्देश्य के साथ कि दूरी में जाकर गहने चुरा लेंगे। तो जहां भी चोर भागते थे घूम फिर कर माई के घर में पहुंच जाते थे। वो सोचते थे वो दूर जा रहे हैं, पहुंच जाते थे निमाई के घर के दरवाजे पर, फिर चोरों ने उन्हें छोड़कर भाग गए। जब निमाई छोटे थे एक दिन वो मित्रों के साथ थे तो एक खूबसूरत पिल्ला उठाकर घर में ले आए। मां ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, तुम पिल्ले को घर में कैसे रख सकते हो, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। निमाई ने कहा अगर पिल्ला नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रहूंगा घर में। तो अंत में कोई उपाय नहीं था। तो एक दिन जब निमाई गंगा में गए थे स्नान करने तो उनकी माता ने पिल्ले को खोल दिया, बांधा हुआ था, और पिल्ला घर से निकल गया। निमाई को सूचना पहुंची, निमाई निमाई तुम्हारी मां ने वो पिल्ले को खोल दिया है, और पिल्ला भी घर से चले गया। तो निमाई बड़े गुस्से हुए, कहां है पिल्ला, सब दोस्तों को भेज दिया पिल्ला ढूंढने के लिए, फिर उन्हें मेरा पिल्ला कहां, न बोले धाम में शहर में। और पिल्ला क्या कर रहा था, दो पैरों पर नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठा रहा था, आंसू बह रहे थे, बाल खड़े हो रहे थे और हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहा था। और पूरा पूरा शहर कहने लगा देखो निमाई का चमत्कार, पिल्ले को भी भक्त बना दिया। अगर आपने पिल्ला रखना है तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप उसे शुद्ध भक्त रखोगे, अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो पिल्ले को मत रखना। तो इस प्रकार महाप्रभु की अनेक बाल लीलाएं हैं। छोटी आयु में ही वो संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। गंगा प्रसाद से उन्होंने संस्कृत भाषा की का ज्ञान प्राप्त किया था। 11 साल की आयु में उन्होंने अपना पाठशाला शुरू कर दिया था। इससे पहले उन्हें एक भक्त मिले थे बांग्लादेश से। बांग्लादेश आज तो मुसलमान देश है, पर उस समय हमारे कई आचार्यों का जन्म हुआ बांग्लादेश में, और कई आचार्यों का निवास का स्थान भी था बांग्लादेश, उनकी भजन कुटी भी बांग्लादेश, और कई आचार्यों की समाधि भी बांग्लादेश में है। तो एक बात थे तपन मिश्रा महाप्रभु को मिले जब महाप्रभु छोटे ही थे 11 साल के। उनसे पूछा मुझे ये बताओ कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मुझे ये ही नहीं पता कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। निमाई ने कहा भगवान की सेवा करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो। और तपन मिश्रा को उन्होंने वाराणसी में भेज दिया। 11 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का विद्यालय खोला और उनका ज्ञान संस्कृत का इतना तेज था, एक बार सुनने में ही वो हर चीज को कंटस्ट कर लेते थे। जो व्यक्ति एक बार सुनने में ही कंटस्ट कर ले उसे क्या कहते हैं, श्रुति धारा। तो नवदेव में जैसे मैंने कहा उस समय सारे विद्वान रहते थे। एक कश्मीरी पंडित था जिसका बहुत तेज अध्यात्मिक ज्ञान संस्कृत का ज्ञान था। इस व्यक्ति को बुलाया जाता था दिग्विजय केशव कश्मीरी। दिग्विजय का अर्थ है जिसने सबको हरा दिया हो, सबसे विजय प्राप्त कर ली हो। ये दिग्विजय केशव कश्मीरी, इसने सूचना भेजी नवद्वीप में, मैंने भारत के सारे पंडितों को हरा दिया है, मैं चाहता हूं कि आपके शहर के प्रतिनिधि मेरे साथ डिबेट करें संस्कृत भाषा में, प्राचीन जैसे आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, हॉकी टूर्नामेंट होता है, उन दिनों में लोगों की संस्कृति ज्यादा अच्छी थी, वो संस्कृत भाषा का टूर्नामेंट करते थे, और ये दिग्विजय ने सबको हरा दिया था। तो जब ये सूचना पहुंची नामदेव के पंडितों के पास कि दिग्विजय केशव कश्मीरी नामदेव आना चाहता है, सब पंडित घबरा गए, उसके आप सुनते ही घबरा जाते थे। सबने कहा हम तो उसके सामने नहीं बैठेंगे, वो तो हमें हरा देगा। तो सबने कहा कि ठीक है, हमारे शहर का सबसे छोटा पंडित है निमाई पंडित, केवल 11 साल का बच्चा है, उसको हम आगे कर देते हैं। अगर केशव कश्मीरी ने हरा दिया निमाई को तो हम कहेंगे हमें थोड़ी हराया, बच्चे को हराया, और हमें एक और मौका, हम कहेंगे बच्चे को हरा दिया अभी हमारे साथ डिबेट करो, तो हमें सेकंड चांस मिलेगा। और अगर किसी हालत से निमाई ने उसे हरा दिया तो हम कहेंगे अगर वो बच्चा हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो इस उद्देश्य के साथ तो केशव कश्मीरी को उन्होंने सूचना भेजी, हमारे शहर का जो सबसे बड़ा छोटा पंडित है और सबसे तेज पंडित, वो दिग्विजय केशव कश्मीरी को मिलेंगे। तो दिग्विजय केशव कश्मीरी बड़े घमंडी भक्त है, ज्ञान था संस्कृत का और शुद्ध भक्त नहीं थे। तो बैंड बाजा को लेकर सब नवद्वीप की ओर प्रवेश कर रहे थे, और निमाई पंडित उस समय गंगा के तट पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। तो केशव कश्मीरी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने निमाई से पूछा, क्या तुम ही हो वो निमाई पंडित जिनकी हमने इतनी प्रशंसा सुनी है? निमाई ने कहा, पता नहीं क्यों आपने प्रशंसा सुनी, मैं तो एक पंक्ति भी ठीक लिख नहीं सकता। तो केशव कश्मीरी ने कहा, मैं आपके संस्कृत के ज्ञान का उदाहरण देखना चाहता हूं, कुछ रचना सुनाओ। निमाई ने कहा, मैं आपके सामने क्या रचना सुनाऊंगा, आपने तो आप तो दिग्विजय हो, आपने तो सबको हरा दिया है, मैं तो आपके सामने खड़े होने में भी शर्मा रहा हूं, आप पहले सुनाइए। तो निमाई के कहने पर केशव कश्मीरी ने 100 श्लोकों की रचना की जिनके द्वारा गंगा नदी का गुणगान हो रहा था, 1 घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना की। फिर उन्होंने निमाई से पूछा, कैसे लगी आपको मेरी रचनाएं? वो चाहते थे कि निमाई कहे वेरी गुड। निमाई ने कहा बहुत अच्छा, पर इन इन श्लोकों का ये कमी थी। निमाई ने 9वां श्लोक लिया, उसके गुणों को समझाया और कमियों को समझाया। जब केशव कश्मीरी ने देखा निमाई ने एक बार सुनने में ही सारे श्लोकों को कंटेस्ट कर लिया, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। और जब निमाई ने कमियां सुनाई, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। केशव कश्मीरी सरस्वती देवी के भक्त है। तो जब केशव कश्मीरी को कमियां सुनाई, वो उत्तर नहीं दे पाए, तो निमाय के जो विद्यार्थी थे वो हंसने लगे। जैसे हम तो कभी हंसी उड़ाते हो लोगों की, निमाय ने रोक दिया विद्यार्थियों को हंसने से, क्योंकि निमाय ने क्या उपदेश दिया है, विनम्रता का भाव सिन्हादपी सुनिचे न। निमाय ने कहा केशव कश्मीरी आज थक गया है, कल उत्तर देगा हमारे प्रश्नों का। तो केशव कश्मीरी घर गए शाम के समय, और घर जाकर सरस्वती नदी की उपासना की। सरस्वती नदी से कहा, आपने हमेशा मेरे द्वारा ज्ञान देकर मेरी सुरक्षा की, पर कल आज सुबह निमाय के सामने मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो क्या हुआ फिर? देवी सरस्वती ने कहा, ये लड़का निमाय साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और फिर तुम उनके शरणागत हो जाओ। फिर अगले दिन केशव कश्मीरी निमाय के क्या हो गए? शरणागत हो गए। जैसे हमने कहा कि निमाय ने 11 साल की आयु में एक पाठशाला खोला था, तो निमाय रोज पाठशाला जाते समय एक दुकान में रुकते थे। वो दुकान किन की दुकान थी? बोला भाई जय श्रीला। ये श्रीलाल भक्त थे, 24 घंटे हरि नाम करते थे, 24 घंटे। उनका पूरा नाम था खोला बेचा श्रीलाल। खोला बेचा क्यों? खोल मन बड़ा केले के पत्तों के प्याले बनाते थे, बंगला में खोल कहते हैं ना, और उन प्यालों को बेचते थे। और खोला बेचा श्रीलाल में इतना त्याग था, आप केले के पत्तों के प्याले बेचकर, थोड़ा केला बेचकर कितना पैसा कमा सकते हो? 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की सेवा में। तो निमाय रोज उनकी दुकान में जाता था। खोला बेचा श्रीधर युधिष्ठिर महाराज जैसे सत्य का उच्चारण करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। निमाय उनकी दुकान में रोज जाते थे, स्कूल जाते समय रास्ते में आती थी उनकी दुकान। तो निमाय उनसे कहते थे, केले का क्या भाव है? वो कहते थे 2 पैसा दर्जन। और निमाय कहते थे, नहीं 2 पैसा बहुत ज्यादा है, तुम बहुत नफा कमा रहे हो, मैं जानता हूं तुम बड़े धनी हो, 1 पैसा होना चाहिए। तो खोला बेचा श्रीधर फिर दौड़कर उनके हाथों से केलों को छीन लेता था, जाओ दूसरी दुकान में जाओ खरीदे, मेरा सिर मत खाओ। तो खोला बेचा श्रीधर रात सारी रात हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते थे। उनके जो पड़ोसी थे वो कहते थे, ये खोला बेचा श्रीधर खुद भी नहीं सोता, हमें भी सोने नहीं देता, लगता है इस भिखारी को भूख लगती है रात को और भूत सताते हैं इसे, तो हमें भी नहीं सोता, खुद भी नहीं सोता, दूसरों को सोने नहीं देता। तो निमाय बंदे रोज इनकी दुकान में जाते थे और रोज उनसे सौदा करते थे। खोले बेचा श्रीधर कहते थे, मेरा सिर क्यों कहते हो, दूसरी दुकान में जाओ। निमाय कहते थे, मैं ये तुम्हारी दुकान क्यों छोड़ू, तुम स्टेडी सप्लायर हो, यहां आऊंगा। और निमाय कहते थे, एक दिन मैं पूरे विश्व को बताऊंगा तुम कितने धनी हो, तुम अपना धन छुपा रहे हो। क्या ध्यान था निमाए कुलवजशीला के पास एक ही धोती थी, उस एक धोती में भी कई छेक थे और उनके रहने के लिए एक कमरा था जिसकी कोई छत भी नहीं थी। जब बारिश आती थी तो कुलवजशीला दीवार के साथ खड़े हो जाते थे कि भीगे नहीं, ये था उनका भाव। तो क्या पूरे घर में एक ही बर्तन था, वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की वो कहते हैं ये बर्तन इतना टूटा हुआ था कि कोई चोर भी इसे नहीं चुराएगा, ऐसी स्थिति थी। तो एक दिन महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश का रूप प्रकट किया, 21 घंटों के लिए विष्णु का रूप प्रकट किया और अपने कई भक्तों को बुलाया जिनमें एक थे कुलवजशीलार। निमाई ने अपने प्रतिनिधि को भेजा कुलवजशीलार को लाने के लिए और कहा कुलवजशीलार को ढूंढना बड़ा आसान होगा क्योंकि तुम जिधर जाओगे वो जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रहा होगा, तुम्हें सारे से ढूंढ लोगे। जब कुलवजशीलार निमाई के सामने आए निमाई ने कहा क्या वर चाहिए तुम्हें मेरे से, जो वर चाहिए ऐश्वर्य चाहिए जो धन चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। कुलवजशीलार ने कहा अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हर जन्म में आपका गुणगान करूं और हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ सौदा कर रखे हैं और हर जन्म में मैं हरि नाम का उच्चारण करूं। तो अगर हमें कोई कहे वर चाहिए तो हम कह देंगे हमको अमेरिका का वीजा चाहिए, और भक्त जो है वो कहता है हमें भक्ति का मौका मिल जाए। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भौतिक सुख दुख तो आएगा पर असली चीज है भक्ति। तो निमाई ने पहले 5 साल तक बाल लीला प्रकट की, फिर किशोर लीला प्रकट की, फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया प्रचार का कार्य हरि नाम संकीर्तन का कार्य। नवादे में श्रीवास अंगन अब गए उधर हमारे मायापुर मंदिर के पास में गए श्रीवास अंगन में महाप्रभु ने अपना हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया। रोज उधर पूरी रात हरि नाम होता था शाम को, और हरि नाम होता था और महाप्रभु क्योंकि अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे वहां केवल जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे उन्हें अंदर आने की इजाजत थी। तो महाप्रभु ने जब अपना हरि नाम कीर्तन आरंभ किया कईयों ने उनका विरोध किया, एक विरोध तो किया जो नवदेव के स्मार्ता ब्राह्मण थे। स्मार्ता ब्राह्मण का भाव था पैसा बनाना, वो हरि नाम के लिए तो कोई कीमत है नहीं, हरि नाम तो आप एक मिनट में सीख सकते हो, आपको कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई पंडित की जरूरी है आप सिखाए हरि नाम का उच्चारण कैसे करें। तो स्मार्ता ब्राह्मण ने कहा ये निमाई इसने क्या ये नकली धर्म शुरू कर दिया है, उनका धंधा खराब हो रहा था। और जो मुसलमान थे क्योंकि उन दिनों में भारत में मुसलमानों का राज्य शुरू हो गया था, नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे और एक काजी था नवदेव का अधिकारी जो बड़े कड़क दिमाग का था, बड़े कड़क दिमाग का जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं जैसे काजी होते थे उन दिनों में वो सब मुसलमान अधिकारी थे। तो मुसलमानों ने कईयों ने जाकर काजी से शिकायत की, दिमाई ने यह हाई नाम का आंदोलन शुरू किया है, लगता है बहुत लोग खींचे जा रहे हैं उसकी तरफ, और लगता है कि हमारे सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। एक मुसलमान व्यक्ति था जो बार बार काजी को कहता था, जल्दी से निमाय के सबके दिन आंदोलन को रोको, नहीं तो सबके इस्लाम को खतरा है यार। तो काजी ने एक दिन कहा, तुम दिन रात कहते हो रोको 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 निमाय के आंदोलन को, तो मैं जब भी देखता हूं तुम्हें, तुम हरे कृष्णा ही बोल रहे हो दिन में रात में दोपहर में। तो वो कहने लगा, ये बात सच है, जब से मैंने ये हरि नाम को सुना है, ये हरि नाम जीप से निकलता ही नहीं। तो निमाई ने श्रीवास आंगन में अपना आंदोलन आरंभ कर दिया था सम कीर्तन का। निमाई को सूचना मिली, निमाई के जब चंद काजी ने कहा अपने प्रतिनिधियों को भेजकर, रोको ये हरि नाम, अगर तुम लोग ये हरि नाम नहीं रोकोगे तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो सबको मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनना या बनाना बहुत आसान था। अगर किसी ने मुसलमान के घर में रोटी खा ली तो हिंदू समाज कहता था बाहर निकल जाओ, अगर आपने मुसलमान के यहां नौकरी कर ली तो भी समाज के बाहर हो गए, अगर किसी की बाल्टी से पानी आपके शरीर पर आ जाए तो वो भी वो समाज के बाहर हो जाते थे। एक कथा है, एक भक्त था सुबुद्धि रॉय, ये नवाब हुसैन शाह जो राजा बने, ये राजा बना चापलूसी करके, पहले नौकर था सुबुद्धि रॉय के घर में, जो कि उस समय के बहुत बड़े जमींदार थे। तो एक दिन हुसैन शाह की पत्नी ने देखा, ओ पिता के पति के पीठ में लकीर का निशाना है। तो उसने पूछा, ये निशाना कैसे आ गया, किसने आपको मारा है? तो हुसैन शाह ने कहा, मैं जब छोटा था मैं सुबुद्धि रॉय के घर में नौकर था, और एक दिन मैंने गलती की, शरारत की, जिसके कारण उन्होंने मुझे सजा दी, मुझे मारा, और ये निशाना उस लकीर का है। तो हुसैन शाह की पत्नी ने कहा, अब तो तुम राजा बन गए हो, खत्म कर दो इसे, इसे तुम्हें मारा था जब तुम बच्चे थे। हुसैन शाह ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे बेटे जैसा पाला था, मैं कैसे उन पर ऐसा हत्या करूं। तो पत्नी ने कहा, ठीक है कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो, मारना नहीं चाहते। तो हुसैन शाह ने पानी का बाल्टी से पानी फेंक दिया सुबुद्धि रॉय पर, वो मुसलमान बन गया। तो सुबुद्धि रॉय की पत्नी बच्चों ने कहा, अब तो तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, अब तो तुम मुसलमान बन गए हो, अब तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो पूरे समाज ने उन्हें बाहर कर दिया। तो उन्होंने मना वाराणसी के पंडितों से पूछा, अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मुसलमान बना दिया था और अब घर में मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है। तो पंडितों ने कहा, उबलते हुए घी को कहकर आत्महत्या कर लो, ये सबसे बेहतर है। वो बोलते हुए घी को खा कर आत्महत्या। फिर से बुद्धि रॉय गए क्षेत्र महाप्रभु के पास, उनसे पूछा इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा छठ हरे कृष्णा और वृंदावन भेज दिया उन्हें। और इसे पूरी रोड वृंदावन गए। छोटी सी धंधा, छोटा सा धंधा था लकड़ी का, दो पैसे महीने कमाते थे और एक पैसा खर्चते थे विधवा औरतों की सेवा में। तो महाप्रभु ने क्या हरि नाम का उसे प्रचार किया। तो वो छोटे भी थे, रोना बंद करते थे कब, जब माता पड़ोस की औरतें हरि नाम सुनाती थी। तो चांदकाजी ने पहले तो सूचना भेजी, अगर तुम हरि नाम नहीं रोकोगे तुम सबको गिरफ्तार कर देंगे या मुसलमान बना देंगे। तो भक्त डर गए। भक्त उन दिनों में हिंदू लोग बहुत डरे हुए थे, तो लोग डर गए। जब महाप्रभु को सूचना मिली कि चांदकाजी ने कहा है हरि नाम बंद करो, महाप्रभु ने कहा हम बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं अब सारे पड़ोस के गांवों में हरि नाम सब कीर्तन करूंगा। सारे गांव सज गए, सबने बत्तियां जला दी जैसे आप दिवाली में बत्तियां जलाते हो। और महाप्रभु ने अपना कीर्तन आंदोलन शुरू किया। और कहां जा रहे थे, चांदकाजी के महल में, और लाखों लोग जुड़ गए। एक दो किलोमीटर लंबी मोर्चा बन गई थी। और कीर्तन करते करते कहां जा रहे थे, किसके घर, चांदकाजी ने जब दूर से देखा इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है तो घबरा गए, छुप गए और सामने नहीं आए। महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ वहां पहुंचे, वो भक्तों ने सब बगीचा वगैरह बदसूरत बना दिया। फिर महाप्रभु मिले चांदकाजी से। चांदकाजी घबरा गया था। चांदकाजी ने कहा आप तो नीलम्बरा चक्रवर्ती के पोते हो, नीलम्बरा चक्रवर्ती तो मेरे चाचा जैसे माने जाते। और फिर महाप्रभु का वार्तालाप शुरू हुआ। महाप्रभु ने कहा वो क्या धर्म है जैसे माता का देहांत, माता को मारा जाता है और पिता को मारा जाता है, गाय और भैंस हमारे माता और पिता है, गाय हमारी सुरक्षा करती है, गाय के दूध से हम पलते हैं, गाय के दूध में जो गुण है वो किसी चीज में गुण नहीं है, और जो बैल है उसके द्वारा अन्न का उत्पादन होता है। तो महाप्रभु ने कहा जिस धर्म में माता और पिता को आदर नहीं दिया जाता, जिस धर्म में माता पिता को मारा जाता है, वो धर्म है क्या है। विकारी ने स्वीकार किया कि हमारे जो शास्त्र किताबें हैं नहीं है, और शास्त्र जोर काजी ने कहा मैं ये आदेश देता हूं कि भविष्य में मेरे आगे की पीढ़ी कभी भी यह हरि नाम संकीर्तन को नहीं रोकेगी। और चांदकाजी ने कहा जिस दिन मैंने अपने सिपाहियों को भेजा तुम्हारे मृदंगा तोड़ने के लिए, उस दिन रात को मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि एक शेर अपने नाखून से मेरे शरीर को छील रहा था। और उस शेर ने कहा अगर भविष्य में तुमने यह हरि नाम संकीर्तन को रोका तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो शंकरजी ने कहा कि तो मैं डर गया, मुझे पता था ये भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से। और फिर चांदकाजी ने ये आदेश दिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो महाप्रभु ने 8 घंटे लगातार कीर्तन किया, और 8 घंटे लगातार कीर्तन करने के पश्चात उन्हें थोड़ी प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो पानी पीने कहां गए, खोलावज शीला के घर में। उनके घर में एक ही बर्तन था जो टूटा हुआ था, एक ही बर्तन। महाप्रभु उस प्याले को लेकर पानी डालकर पीने लगे। जैसे वो पीने लगे खोलावज शीला ने कहा, रोको रोको, क्या कर रहे हो, मेरे झूठे बर्तन से पानी पी रहे हो। और महाप्रभु ने कहा, पीने दो मुझे, मैं इसे पवित्र हो रहा हूं। महाप्रभु ने इतना आदर दिया खोलावज शीला को। एक समय सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने आए थे वाराणसी। जब वो आए थे तो उनका शरीर बिल्कुल गंदा था। महाप्रभु ने गले लगाकर मिले। सनातन ने कहा, आप क्या कर रहे हो, मेरा शरीर इतना गंदा है। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं तुम्हें तुम्हारे शरीर को छूकर। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण के द्वारा ये स्थापित किया कि साधु को कि क्या कदर होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु शिवस आंगन में रोज कीर्तन कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि ये कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए उनके शुद्ध भक्तों को ही इजाजत थी, तो महाप्रभु रोज कीर्तन करते थे। एक दिन भक्तों ने कहा, हमें भूख लग रही है, कुछ आम मिलेगा खाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। महाप्रभु ने एक आम का बीज बो दिया और वो बीज मिनटों में बड़ा पेड़ बन गया, मिनटों में सबके सामने। और उस पेड़ में 200 पके हुए आम थे और एक पका हुआ आम इतना भारी था कि एक आम से ही आपका पेट भर जाता था। और इन आमों में ना कोई छिलका था ना गुटली। हमने ऐसा आम देखा है कभी, गुटली भी नहीं छिलका भी नहीं। तो एक साल के लिए रोज रात को कीर्तन के बाद उस आम के पेड़ से 200 आम निकलते थे। तो महाप्रभु बांटते थे हर भक्त को एक एक आम। एक साल बाद वो पेड़ समाप्त हो गया। तो महाप्रभु की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाय आनिया, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने आश्रम में गोपी भाव प्रकट कर रहे थे। गोपियों का जो भाव है सबसे उत्तम है। हम सोचते हैं कई बार ये गोपियां भगवान की सहेलियां थी, सहेलियां नहीं थी। गोपियों ने सबसे ऊंचा त्याग किया था भगवान के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में कह रहे थे, गोपी 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 गोपी, गोपियों का स्मरण कर रहे थे। तो कई संस्कृत के विद्यार्थी थे वहां, वो कहने लगे, गोपी 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 क्या बोल रहे हो, हरे कृष्णा बोलो। महाप्रभु को शिक्षा देने लगे, तो महाप्रभु डंडी लेकर भागे उनको, गोपी 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 क्यों कह रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। तो महाप्रभु ने उनका पीछा किया, वो भागे बोलकर, तो महाप्रभु उनके पीछे भागे और महाप्रभु पहुंच गए जहां एक बड़ी सभा हो रही थी संस्कृत के विद्यार्थियों की। तो सब विद्यार्थी आए महाप्रभु से लड़ने के लिए। तो अपने आप को क्या सोचते हो, तो बड़े संस्कृत के विद्वान हो क्या, हमारे सामने लड़ने आए हो क्या, एक बार फिर से तुमने अगर हमारे किसी विद्यार्थी को डांटा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो विद्यार्थी ने ऐसे किसको कहा, महाप्रभु को। तो निमाई पंडित सोचने लगे, मैं प्रकट हुआ हूं पतितों का उद्धार करने के लिए और यहां मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये लोग लड़ने को आ गए, डंडा लेकर आ गए महाप्रभु को निमाई को मारने के लिए। और निमाई प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए और निमाई ने देखा इतना अपराध कर रहे हैं ये विद्यार्थी। तो निमाई सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर निमाई ने निर्णय किया मुझे संन्यास लेना है। उस समय इनकी आयु 24 साल की हो गई थी और उन्होंने फिर संन्यास लेने की तैयारी की, क्योंकि भारत में चाहे आप मायावादी सन्यासी हो, आपको सन्यासी को आदर मिलता है, कदर मिलती है। तो महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया कि और किससे सन्यास दीक्षा ली, केशव भारती से, कौन से गांव में, कठवा गांव में महाप्रभु ने सन्यास लिया। सन्यास लेकर महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए और जब वो पहुंचे और जगन्नाथ और नित्यानंद वगैरह से आगे बढ़कर वहां पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही जगह 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 कहते कहते भक्ति भाव में बेहोश हो गए। जो बेहोश होकर गिरे का बिल्कुल दरवाजे के सामने और पुजारी ने भगवान को भोग लगाने के लिए दरवाजा बंद करना था, तो फिर ब्राह्मण ने पुजारी भक्तों ने कहा, वहां एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था सर्वभौमा भट्टाचार्य। सर्वभौमा भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार है और जब मुसलमानों का बंगाल में राज्य शुरू हुआ तो वहां छोड़कर उन्हें उड़ीसा में आना पड़ा जहां के एक धार्मिक हिंदू राजा था महाराज प्रताप रुद्र। तो जब उन्होंने देखा महाप्रभु को, उन्होंने देखा उनका सांस वांस कुछ भी चल रहा नहीं है, पर एक रूई रखी उनके नाक में, जब रूई हिली तो वो समझ पाए कि अभी तक वो जिंदा है। फिर उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। थोड़ी देर बाद नित्यानंदा जी वहां पहुंचे दूसरे भक्तों के साथ, उन्होंने सुना कि मंदिर में चर्चा हो रही है, एक बड़ा खूबसूरत सन्यासी आया था जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही बेहोश हो गया, जिसे उठाकर ले गए हैं सर्वभौमा भट्टाचार्य के घर। सर्वभौमा भट्टाचार्य का घर कई साल पहले गया था, जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में, तो जब नित्यानंदा जी और साथी वहां पहुंचे, उन्हें पता था क्या, उन्हें पता था कि महाप्रभु यहां हैं, उन्हें पता था उन्हें कैसे होश में लाना। उन्होंने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन, महाप्रभु होश में आ गए। सर्वपदाचार्य के एक रिश्तेदार थे, ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य को बिना शंका के ये पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर सर्वपदाचार्य कहते थे नहीं, वो भगवान नहीं हो सकते, ये वे महात्मा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो जब चैतन्य महाप्रभु होश में आए तो सर्वपदाचार्य ने देखा, मुझे लगा कि ये सन्यासी इतना खूबसूरत है, लंबा सुनार रंग का, लंबे हाथ लंबे कंधे, कहीं माया में नहीं गिर जाए। तो सर्वपदाचार्य ने कहा, आप इतने खूबसूरत सन्यासी हो, मुझे डर है तो माया में नहीं गिर जाओ, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूं। तो उन्होंने क्या सुनाया, वेदांत सूत्र, सात दिन सात रात वेदांत सूत्र की व्याख्या देते गए। सर्वभौम भट्टाचार्य थे मायावादी सिद्धांत के, और महाप्रभु ने कुछ नहीं पूछा। अक्सर हम तो एक मिनट नहीं बोलने देते किसी को, कोई बोल रहा है तो बीच में दो मिनट में काट देते हैं, पर महाप्रभु ने सात दिन तक कुछ नहीं बोला, दिन रात सुनते गए सुनते गए। फिर महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, सब भट्टाचार्य पूछने लगे, आपको कुछ समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आपने सात दिन से एक प्रश्न नहीं पूछा। महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र का जो संदेश है उसको समझना बड़ा आसान है, जैसे जब धूप हो तो हर चीज ठीक दिख जाती है, पर आपने वेदांत सूत्र के संदेश को बदल दिया है, जैसे बादल आने पर धूप का प्रभाव कम हो जाता है। तो फिर दोनों की चर्चा हुई, जिसमें एक आत्मनाम श्लोक है भगवतम में, जिस पर चर्चा हुई। सबसे पहले सर्वमान्य भट्टाचार्य ने इस श्लोक को नौ अलग तरीकों से समझाया और महाप्रभु से कहा, आप अभी इसकी व्याख्या करो। और महाप्रभु ने एक ही श्लोक की व्याख्या 64 अलग तरीकों से की, और किसी को भी डुप्लीकेट रिपीट नहीं किया, 64 बिल्कुल अलग अलग। जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने सुना 64 अलग तरीकों से महाप्रभु ने एक ही श्लोक की रचना की है, तो वो समझ गए ये जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान का अवतार होगा, उनके शरणागत हो गए। और उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो रहा था। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, अपने चार हाथों का रूप प्रकट किया, उसके पश्चात श्याम सुंदर का, और उसके पश्चात सद्भुज, छह हाथों, और सर्वभौमाचार्य उनके शरणागत हो गए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने हर प्रकार के व्यक्ति को वैष्णव सिद्धांत के प्रति आकर्षित किया। एक समय जब महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जो बुद्धिस्ट के नेता थे उनको हरा दिया, तो बुद्धिस्ट भक्तों ने بڑا اپمان محسوس کیا, ہمیں ہرا دیا. انہوں نے سوچا ہمیں بدلہ لینا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, اگلے دن وہ آئے ایک بڑی تھالی میں سڑا ہوا جلا ہوا کھانا رکھ کر. تو مہاپربھو کہنے لگے, یہ ہم آپ کے لیے مہاپرساد لائے ہیں, مہاپرساد لیجیے. جیسے وہ مہاپرساد کی تھالی ارپن کر رہے تھے مہاپربھو کو, ایک باز آئی اوپر سے. باز نے وہ جلا ہوا کھانا تو لے لیا پر پتل کی تھالی گرا دی جو ان کے گرو کے سر پر گری. وہ پتل کی تھالی گرو کے سر پر گری تو گرو جی بھی ہوش ہو گئے. تو سارے جو شیشے تھے ان میں پچھتاوا کا بھاو آیا, ہمارے کارن ہمارے گرو جی ابھی مرنے والے ہیں. تو وہ سب گئے مہاپربھو کے چرنوں میں, اور مہاپربھو کے چرنوں میں جا کر کہنے لگے, ہم معاف کر دو, ہم نے اپرادھ کیا تھا, ہمارے گرو کی جان کو بچا دو. گرو اور مہاپربھو نے کہا, گرو کے کانوں میں جا کر ہرے کرشن مہامنتر کا اچارن کرو. پھر گرو کے چرنوں میں جا کر مہامنتر کا اچارن کیا, وہ سارے بدھسٹ کیا بن گئے, ویشنو بن گئے, سب نے ہری نام کیا. اس وقت مہاپربھو نے اپنے پرچار کے دوران ہر پرکار کے ویکتی کو بھکتی کے پرتی آکرشت کیا. تو چیتنیہ مہاپربھو سوئم بھگوان ہیں, آپ سب کا بھاگیا ہے کہ آپ ان کی اس آندولن میں جڑے ہو. چیتنیہ مہاپربھو کے وشے میں تین سادھن ہیں جن کے دوارا آپ پورا گیان پراپت کر سکتے ہو. ایک ہے چیتنیہ بھاگوت, جس کی رچنا کس نے کی, نامندر ٹھاکر نے چیتنیہ بھاگوت کو چیتنیہ منگل کے نام پر چھاپا تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوچن داس ٹھاکر نے گرنتھ کی رچنا کی ہے چیتنیہ منگل کے نام سے, انہوں نے نام بدل دیا چیتنیہ بھاگوت. ایک ہے چیتنیہ چرتمریتا, جس کی رچنا کرشن داس کا. آپ میں سے کتنے بھکتوں کے پاس چیتنیہ چرتمریتا کی سیٹ کا سیٹ ہے, ہندی گجراتی مراٹھی؟ بس سب کے پاس ہونا چاہیے, سارے بھکتوں کے چیتنیہ چرتمریتا اسٹاک میں ہے, ادھر ہندی میں ہے, انگلش میں ہے, گجراتی میں ہے, مراٹھی میں. چیتنیہ چرتمریتا میں چیتنیہ مہاپربھو کی لیلا ہوں اور اپدیش. تو جن بھکت کے پاس نہیں ہے, میرا نویدن ہے بک اسٹال میں جا کر آج بڑا شبھ دن ہے, لے سکتے ہو. اور چیتنیہ منگل, پھر ان گرنتھوں کے مادھیم سے ہمیں چیتنیہ مہاپربھو جی کے وشے میں گیان پراپت ہو رہا ہے. تو آپ سب کو کیا کرنا چاہیے, آج چیتنیہ مہاپربھو کے شرنگت ہو کر ان سے یہ پرارتھنا کرنی چاہیے. کیا کیا پرارتھنا؟ کہ ہری نام میں آپ کی روچی بڑھے, کہ آپ چیتنیہ مہاپربھو کے اچھے بھکت بنو. اور چیتنیہ مہاپربھو نے کیا کہا, جارے داکھو جسے دیکھو تو کیا کہو, کرشن کمرے. اور چیتنیہ مہاپربھو نے بھارت واسیوں کو کیا آدیش دیا, امریکہ جاؤ, کیا آدیش دیا؟ بھارت بھوئی میں دہلا جنم ستا کا کری کورو پروپ کر. جو ویکتی بھارت بھومی میں جنم لے, ابھیشک آئی ٹی کے گولڈ میڈلسٹ بن جاؤ, نو پرابلم. ساتھ میں ہری نام کرے, اپنا ادھار کرے اور دوسرے کو ادھار کرے. اور چیتنیہ مہاپربھو نے کہا, ہمارے آگیا سے تم سب پرچارک بنو. تو ہم سب کو اس شبھ اوسر پر یہ نویدن کرنا, بھگوان سے پرارتھنا کرنی چاہیے کہ ہم ان کی کرپا سے پرچارک بنے, جس کے دوارا بھگوان کا سندیش اور بھی پھیل سکے. سب تیار ہو اس کے لیے؟ تو کیا پرارتھنا کرو گے آج کے دن؟ اینا میں روچی بڑھے. چیتنیہ مہاپربھو نے پانچ وشوں پر بل دیا, साधु संग धामा कीर्तन भागवतम श्रवणम और आचार्य विग्रह की पूजा। साधु संगत में रहो, साधु संगत में रहोगे तो ठीक भाव रहेंगे, वो भाव रहेगा कि सदा हमें यही नाम का उच्चारण करना चाहिए, भागवतम का श्रवणम करो और श्रद्धा और आदर के साथ आचार्य विग्रह की पूजा करो। इस प्रकार करोगे तो अपने जीवन को सफल बना सकोगे। चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों के सबसे दयालु अवतार है, तो आज हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उनकी शरण में आए और प्रयास करोगे महाप्रभु अवश्य ही सहयोग देंगे। चैतन्य महाप्रभु की गौरांग 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 हरे कृष्ण। मुझे अभी मीरा रोड जाना है लेक्चर के लिए। कोई प्रश्न है किसी का? ओके या
महाप्रभु अलाउ क्यों नहीं करते दूसरे ऐसे भक्तों को? तो अलाउ करना चाहिए था,
क्योंकि सारे भक्त महाप्रभु की दिव्य कार्य को ठीक समझ नहीं पाएंगे।
अरे विष्णु महाराज ऐसे इच्छा कैसे प्रकट होगा?
क्या इच्छा?
जैसे आप बोले कि प्रचार करना चाहिए महाप्रभु को, ये करना चाहिए।
सुनने से सुनोगे तो शुद्ध भाव अनुकूल होंगे, सुनना बहुत जरूरी है। ओके हरे कृष्णा।